इंतजार कैसे करूं सना आंटी, मेरी भी कोई इज्जत है। हमने सब लोगों को दावत दे दी है, खानदान के सब लोगों को, खाला फुप्पियां मामू ऑफिस वाले दोस्त अहबाब, उनसे क्या कहूंगा मैं, अपने माँ बाप से क्या कहूंगा मैं, उनसे ये कहूंगा जो शादी हमने तय की थी अब हम उसे रोकना चाहते हैं। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ एक वजह बता दे, एक वजह बताए
मुझे। बता सकती, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। सुनो मोहसिन, एक बात बताना चाहूंगी। पहले दिन जब तुमसे बात की थी तो समझ गई थी कि तुम वाकई नाजगुल को बहुत पसंद करते हो। ये भी समझ गई थी कि तुम बेहतरीन शोहर होगे जिसकी नाजगुल को जरूरत है। ये इसलिए बताया है कि समझ जाओ कि मसला तुमसे और तुम्हारी फैमिली से बिल्कुल नहीं है। अगर अब भी नाजगुल को पसंद करते हो तो उसका इंतजार करना होगा।
लेकिन मैं कह रही हूँ जो मोहसिन लेके आया वो ज्यादा खूबसूरत है।
हाँ बहुत, लेकिन काफी कीमती होगा ना।
हाँ मोहसिन तो दूसरा ले रहा था लेकिन अम्मी ने मना कर दिया कि ये ले लो।
वाकई?
एक मिनट रुक जाइए। आ जाइए। इत्तफाक से हम आपकी ही बुराइयां कर रहे थे। तुमने जो गिफ्ट खरीदा है हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। दूसरा वाला तो हमने नहीं खरीदा था, वैसे भी वो सिर्फ महंगा ही था। ये जो हमने खरीदा है बहुत खूबसूरत है, शीरीन ने भी यही कहा।
हाँ बहुत अच्छा है।
बहुत शुक्रिया। उन्हीं दिनों में शीरीन की भी शादी है, हम भी वहाँ जरूर जाएंगे। अरे हाँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरा कुछ सामान ले जाओ, शादी के फजूल खर्चों से बच जाओगी, ठीक है ना? चाहो तो शादी का सूट भी। सुने मोहसिन, कहाँ जा रहे हैं मोहसिन? खाला, क्या हुआ है? अम्मी जान,
बैठ जाओ।
क्या हुआ है अम्मी?
बैठ जाओ, बताती हूँ।
नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं क्या हुआ है।
ठीक है, तुम्हारे वालिद एक किसान जो रुतबार में जैतून के दरख्त लगाने वाले नहीं थे।
नहीं थे?
नहीं, उन्हें तो जैतून बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने तो सारी जिंदगी में जैतून चखा भी नहीं होगा। शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि रुतबार कहाँ है। यहाँ तक कि शायद उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि रुतबार में जलजला भी आया होगा। पहली दफा जब मैंने उन्हें देखा था तो मैं तुमसे भी बहुत छोटी थी।
आती हूँ भाई। क्या हो गया है? रुक जाओ, आ रही हूँ मैं। इतनी क्या जल्दी?
अस्सलाम वालेकुम।
माफ कीजिएगा, वो मुझे लगा मेरी दोस्त है।
मैं शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया था। अलबत्ता मैंने मोहम्मद से कहा भी था कि मेरा आना जरूरी नहीं, अगर मुनासिब हो तो मैं सिर्फ गुलदस्ता भिजवा दूं।
तुम्हारे पापा उस वक्त मेरे भाई के दोस्त थे। तुम्हें यकीन नहीं होगा उन्होंने कहां मुझे प्रपोज किया था।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बाबा ने बताया था कि आप आई थी।
जी हाँ।
मेरा पैगाम आपको मिल गया था?
जी हाँ, उन्होंने बताया कि आप नहीं चाहते कि मैं कुछ बोलूं।
हाँ, मैंने सोचा आप इसके दरमियान ना आए तो अच्छा होगा। एक पैगाम और भी है कि जो मैं अपने बाबा से कहता, जोहर के वक्त उसी दिन जब मोहम्मद के साथ ये हादसा हुआ, मैंने उससे आपका रिश्ता मांगा था। कहने लगा आपको बता दूं कि वो राजी है। सोचा था कि जैसे ही तैरान आऊंगा सबसे पहले यही काम करूंगा कि आपके घर जाकर आपका रिश्ता मांगूंगा, मगर ऐसा नहीं हो सका, नहीं हो सका।
जब मैंने अपने दिल से पूछा तो मेरी ख्वाहिश भी उन्हीं से शादी करने की थी।
तुम बताओ क्या सोचती हो?
किस बारे में?
अरे भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम भी उसको पसंद करती हो? बहुत अच्छा, समझ गई। ताली दोनों हाथों से बज रही है, मतलब तुम भी उस लड़की को बहुत चाहती हो।
लेकिन हकीकत में मेरे घर वाले भी और उनके घर वाले भी शादी के खिलाफ थे।
उस लड़के का गुनाह जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो पैसे वाला है। वो समझता है कि इंसानों की इज्जत हैसियत खरीद सकता है, समझता है कि पैसे से इंसान की अकल तक खरीद सकता है। यहाँ तक कि उस दिल जले बाप का दिल भी जिसका बेटा मर चुका है। मगर पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के की बातों से उसकी हिम्मत का अंदाजा हो रहा है। ऐसा लगता है कि एक दिन वो लड़का आएगा मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए। मैं मौत को तरजीह दूंगा मैं सोचूंगा कि उस लड़के से कोई ताल्लुक ना रखूं। ये मेरा आखिरी फैसला है।
उनका खानदान और मेरा खानदान दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग थे। दो ऐसी दुनिया जो एक दूसरे से बहुत दूर हों, बहुत ही दूर। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने इख्तलाफात होने के बावजूद, हमने अपनी एक छोटी सी दुनिया अलग बना ही ली थी। छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरत।
क्या हुआ?
घबराहट हो रही है मुझे।
अरे घबराने की क्या बात है, तुम्हें तो सब आता है, जाओ जाकर लिख कर आओ।
ताहिर आप मेरे लिए दुआ करेंगे ना?
बेफिक्र रहो, चलो अब जाओ।
दुआ करिएगा। हाँ, खुदा हाफिज।
ख्याल रखना। सताईश, मैं चाह रहा हूँ कि हमें एक कातिब मिल जाए जो हमारे इश्क और मोहब्बत और जिंदगी और शादी को लिख सके।
हम खुद ही लिख लेते हैं ना कि हम दोनों ने कितनी मुश्किलों के बावजूद, कितने हालात खराब होने के बावजूद, घर वालों के मुखालफत के बावजूद ये शादी की है।
और ये भी कि उस आदमी के पास कोई काम नहीं था, नौकरी भी नहीं,
और उसकी बीवी को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया।
ये लीजिए, ये आपके लिए।
ये तो बहुत ही खूबसूरत है।
जानते हो इन फूलों से खूबसूरत क्या है? हमारी बेटी, मेरी जान। ये लो, आओ तुम्हें फीडर पिला।
मुझे दे दें आप, ये आपसे नाराज।
अच्छा?
है।
क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो नाराज हो गई? मेरी बेटी है।
चलिए आप जाकर खाना खा लें।
इसकी बात मत सुनना बेटा, जब तक तुम खाना खाओगे ये सो जाएगी, जब तक ये जाग रही है खेल रहे इसके साथ।
सुन लिया तुमने?
बाबा जान, एक बात मैं आपको बता दूं, आज जानती हूँ कि आप सुबह से शाम तक मेरी खातिर काम करते हैं, ये भी जानती हूँ कि मेरे लिए इतनी तकलीफें उठाते हैं। और क्या था? हाँ, जानती हूँ कि मेरी खातिर अपने घर वालों से अलग रह रहे हैं आप, मगर आपको याद रखना होगा कि दिन में एक दफा मेरी तारीफ भी कर दिया करें। आप सुन रहे हैं ना?
हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
आप जानते हैं कि मैं ठीक हूँ।
अम्मी जान, अम्मी जान, उसके बाद क्या हुआ?
प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन निभाना।
मुझसे इसकी बेबसी देखी नहीं जाती।
ये एक पुराना जख्म है जो बहुत जल्द भर जाएगा। दर्द जरूर होगा, लेकिन इन बच्चों को लाजमी सब कुछ मालूम होना चाहिए।
ये वो तमाम बातें थी जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी।
आपने अब तक मुझे क्यों नहीं कुछ बताया?
सोचा था कि इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी।
कब तक नहीं बताती?
हमेशा तक।
मतलब कभी भी आपने नहीं सोचा कि हमें पता चले कि हम कौन हैं? मतलब आपने फैसला कर लिया था कि इस झूठ को कायम रखेंगी?
मुझे माफ कर देना।
आ गई आप आंटी? नाजगुल कहाँ है? अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। बाकी काम मैं नाजगुल के साथ खत्म कर दूंगी।
यहां क्यों बैठी हो तुम? ऊपर क्यों नहीं गई? अगर मेरे पास आना है तो आ जाओ, खाना तैयार है।
आप जानती थी ये सब?
हाँ जानती थी मैं।
आपके ख्याल में अम्मी ने ठीक किया क्या?
पिछले साल मैं और मुर्तजा साहिल समंदर गए थे। कुछ बच्चे पानी में नहा रहे थे, शायद पानी में खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक बच्चा डूबने लगा। कभी वो बच्चा डूब रहा था और कभी ऊपर आ रहा था। सब देख रहे थे। बस वो डूबने ही वाला था कि अचानक एक औरत बेसाख्ता पानी में कूद गई। जब वो उस बच्चे के करीब पहुंची तो वो भी डूबने लगी। फिर पता चला कि उसे भी तैरना नहीं आता था। माँ और उसका बच्चा दोनों ही डूबने वाले थे। फिर कुछ लोगों ने मिलकर उन दोनों को पानी से बाहर निकाला। उसकी माँ का बुरा हाल था। जब वो होश में आई तो किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा कि तुम आखिर पानी में क्यों कूदी। उससे किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें खुद तैरना नहीं आता था तो तुम पानी में क्यों कूद गई। जानती हो क्यों? क्योंकि जितनी भी औरतें वहां मौजूद थीं वो सब माएं थीं। मैं जानती हूं कि माँ का प्यार बच्चों के लिए किसी भी किस्म की वजह नहीं रखता। जब तुम माँ बनोगी तो खुद समझ जाओगी।
बोलो मेरी बेटी।
मैं चाहती हूँ आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सारी दुनिया के बदले में भी आपको नहीं छोड़ूंगी। खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी अम्मी आप हैं।
आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
अम्मी जान, मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल बच्चों की तरह आपके साथ सोचूं।
इसलिए कि वो मेरी पोतियां हैं, वो मेरा खून है, मेरा खून मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो एक ऐसा बेटा था जिस पर मैं अपनी सारी दुनिया लुटा सकता था, एक ऐसा बेटा था जो आखिरी सांस तक वफा करता, लेकिन फिर तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया और आज बहिश्त जहरा में सो रहा है। मैंने खुद अपने हाथों से उसे कब्र में उतारा था, तुम्हारी माँ से कहा था मैं तुम्हें सारी उम्र अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हूँ। याद रहे ये मेरे ताहिर का बेटा है। मैंने तुम्हारी माँ से कहा इस बच्चे को मुझे दे दो, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा मैं इसका इकबाल भी नहीं दूंगी। मेरे दिल में बस एक ही हसरत थी कि मैं तुम्हें एक नजर देख सकूं, लेकिन उसने ऐसा होने नहीं दिया। चली गई, चली गई।
मतलब 20 साल से आप इन शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी?
जी हाँ।
और इन तीनों के मालकान मर चुके हैं?
जी हाँ।
मोहम्मद रुदबारी, फातिमा रुदबारी और सना बानो रुदबारी, और आप 20 साल बाद चाहती हैं कि इस जाली शनाख्त को असली शनाख्त बना लें? जनाब मुर्तजा, आप तो काफ़ी सीनियर हैं।
शुक्रिया।
आप तो जानते होंगे कि इस काम का पहला कदम सच्चाई है, और इस केस में हकीकत तो बच्चे ही हैं। बच्चों के लिए इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था। उनको उनकी शनाख्त वापस मिल जाएगी, आप इस बात से परेशान ना हों। जो कागजात उनके नकली नाम पर हैं, चाहे वो तालीमी कागजात हों या शनाख्ती कार्ड हों, वो आपके बच्चों को मिल जाएंगे। बस आपको नकली कागजात के साथ एक दरख्वास्त जमा करानी होगी।
बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ।
लेकिन हो सकता है कि आपको इस जुर्म के बदले काफी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी।
जी कोई मसला नहीं है।
फिर ठीक है।
इसका मतलब उसे लॉकअप कर देंगे?
मैं जज नहीं हूँ, इसलिए मैं बस।
अच्छा, जिस वक्त इसने ऐसा किया इसे मालूम नहीं था कि ये जुर्म है? ये एक नौजवान लड़की
बेगम,
मैं सच कह रही हूँ। इसका शौहर मर गया था, इसका ससुर इसके बच्चों को जबरदस्ती छीनना चाहता था, उसके पास वसाइल थे। अब इसमें इसकी क्या गलती है?
मिसेज मुर्तजा
जी,
कानून की दो किस्में होती हैं, बहुत बेरहम भी है और रियायत भी देता है। बेरहम इसलिए भी है कि कोई कानून शिकनी ना करे। आपने सुना होगा जहालत का कानून की जिम्मेदारी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन रियायत मिलने से है। मतलब सजा सुनाने से पहले हर बात पर गौर किया जाता है, और अच्छा होगा कि हम रियायत वाले पहलू पर कानून से उम्मीद रखें।
आप तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा वकील है।
बुरा था क्या?
देखा नहीं, कह रहा था कि जुर्म है, जहालत है, कानून है, और क्या कहलवाना चाह रहे थे आप? बस यही कहना बाकी रह गया था कि चलिए मोहतरमा, आप जेल की तरफ चलिए।
आतिफा, उसने कानून की रियायत के बारे में भी बताया था ना?
अच्छा, जब सताइश की बारी आए और कानून की रियायत का कुछ पता ही ना हो तो फिर क्या होगा?
परेशान नहीं हूँ, चलें बैठें।
चलो अब बैठो।
मैं खुद आ जाऊंगी।
क्या मतलब कि मैं खुद आ जाऊंगी?
मैं कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ।
आज तुम थकी हुई हो, कल चली जाना।
नहीं, मुझे आज ही जाना है।
मरहूमीन कहीं भाग नहीं जाएंगे। आज तुम थकी हुई हो, कल मैं खुद लेकर चलूंगी।
मैं खुद ही जाना चाहती हूँ आतफा, मैं अकेले जाना चाहती
हूँ। सताईश बहन, बैठ जाएं, बैठ जाएं प्लीज।
मुझे लाजमी जाना है। हाँ बोलो।
मुझे आपसे बात करनी है।
ठीक है, बाद में करना।
बाद में नहीं, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त बात करनी है मुझे।
कह रही हूँ बाद में करूँगी, कल।
आज ही, अभी आज ही। बताएं कहाँ है, मैं वहीं आ जाऊँगा।
मैं कब्रिस्तान अपने शोहर के पास जा रही हूँ, तुम्हारे बाबा के पास।
ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। कब्रिस्तान कहाँ है?
तुम्हारे वालिद का नाम ताहिर है, ताहिर फिरदौस।
मैंने पूछा कब्रिस्तान कहाँ है। हेलो, हेलो,
अस्सलामु अलैकुम। माफ़ करना, थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर नहीं, 20 साल। इतने सारे काम जो मुझे दिए हुए थे, इतनी सारी फरमाइशें, और फिर दूसरी तरफ तुम्हारे बाबा। मैं कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल था। तुम्हें क्या लगता है एक बेवा औरत के लिए सब कुछ करना आसान है? ये सिर्फ एक बेवा औरत ही समझ सकती है, कितनी मुसीबतों में रहना पड़ता है। इलाके के मर्दों की नज़रों को देखो, औरतों को घूर रहे होते हैं। जब तक, छोड़ इन सब बातों को ताहिर, मुझे लगता है कि बस अब मैं थक चुकी हूँ। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। नाजगुल अब बड़ी हो चुकी है, जवान हो गई है। बेटा थोड़ा सा लड़ाकू है, लेकिन वो भी अच्छा है। 20 साल बाद वो शनाख्ती कार्ड जो हमें अजीज फूफी ने दिए थे, वो मुसीबत बन गए हैं। बहुत परेशानी में हूँ। कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। तुम्हें याद है ताहिर, जिस दिन तुमने कहा था कि बच्चों को अपने साथ रखकर परवरिश करना, तुमने सोचा था कि यहां तक नौबत आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, तुम राजी रहो, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है।
मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं।
पहले बैठो, अपने बाबा के लिए फातिहा पढ़ लो।
Thank you. मैं कौन हूं अम्मी जान? अगर आपका नाम सना है तो
तुम मेरे बेटे हो। मेरा नाम कुछ भी हो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरे बेटे हो और ये तुम्हारे वालिद हैं।
मतलब मेरे वालिद अब्दुल्ला रुतबारी नहीं है?
नहीं।
और वो जलजले में मलबे के नीचे भी नहीं आए थे?
नहीं।
ना वो किसान थे और ना कोई गरीब इंसान, और ना ही रुतबार के रहने वाले थे?
नहीं। तुम्हारे वालिद यही हैं जो यहां सो रहे हैं, ताहिर फिरदौस।
हशमत फिरदौस का बेटा, इतनी दौलत का मालिक, इतनी दौलत का मालिक, उसके बावजूद आप हमें इतनी मुसीबतों और तंगदस्ती में रखी हुई थी। हमें एक जोड़ी जूते के लिए महीने इंतजार करना पड़ता था, और कितनी दफा आपने हमें प्यास के साथ रोटी तक खिलाई है।
मैं जो कुछ भी तुम लोगों के लिए कर सकती थी किया है।
क्या किया है आपने?
तुम्हारे वालिद यही चाहते थे।
वो ये चाहते थे कि हम नकली शनाख्त पर बड़े हों, गरीबी में बड़े हों, हसरत में बड़े हों।
वो चाहते थे कि तुम दोनों मेरी सरपरस्ती में बड़े हो।
झूठ बोल रही हैं आप। मालूम हो गया मुझे आपकी तरबियत का। जिस परवरिश का बाबा कह गए थे वो ये थी।
सुनो सताश, चाहे जैसे भी हालात हो जाए, यहाँ तक कि रात को खाने को कुछ भी ना हो, लेकिन उस घर का दरवाजा तुम कभी मत बजाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों पर उनका साया भी पड़े। मुझ में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से है। अगर आज मैं खामोश हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से ही खामोश हूँ। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूंगा कि मेरे बाबा मेरे बच्चों को बिल्कुल अपनी तरह का इंसान बना दे, बकौल उनके जमाने के।
आपको खुदा का वास्ता, आपको खुदा का वास्ता ऐसा ना कहें।
अपने बच्चों को खुदा के बाद तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ सताश।
कहीं मैंने तुम्हारी बातों को समझा ही नहीं हो।
हमारे बच्चों को अपने बाबा जान हाजी नादरी के उसूलों पर बड़ा करना, ना कि मेरे बाबा के उसूलों पर।
क्या मुझसे गलती हो गई है? मतलब मैं तुम्हारी बात ठीक से समझ ही नहीं पाई। मतलब मैं कोई और रास्ता चुन लेती जिस पर चलकर तुम्हारी बातें भी पूरी हो जाती और बच्चों की ख्वाहिशात भी। अगर मुझसे गलती हो गई हो तो क्या होगा? अगर इतना सब अजाब जो मैंने बच्चों को दिया, हाय ताहिर, तुम चाहते थे कि मुझसे नहीं हो सका, नहीं हो सका, माफ करना मुझे।
मैं उसको अकेले जाने नहीं दे रही थी। बात नहीं सुनती वो, शुरू से ही ऐसी है। नाजगुल तुम नहीं जानती मैं उसे कितना
मैं जानती हूँ, उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मी जब भी कोई काम करना चाहती हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
मुर्तुजा, क्या हम सताईश को कहीं देखने के लिए चलें?
तुम अगर थोड़ी देर रुको तो मैं कुछ करूं, सोचता हूँ मुझे क्या करना है।
आ गई है, खुदा करे आ गई हो। हाँ बोलो। हाँ आ गई।
उससे सवाल मत पूछने लग जाना, पहले उसकी तबीयत का ख्याल रखना।
मुर्तुजा, मैं उससे कुछ पूछे बगैर नहीं रह सकती, वरना मुझे कुछ हो जाएगा।
इसके बजाय जाओ उसकी मदद करो, कहीं उसे सर्दी या बुखार ना हो जाए।
लेकिन कोई तो इसे समझाने वाला हो कि इस हाल में वो कब्रिस्तान क्यों गई थी। हम यहाँ इसके लिए परेशान हो रहे हैं और ये है कि हमारी बात सुनती ही नहीं।
अम्मी जान, आपको क्या हुआ है?
क्या हुआ?
पानी से भीगी हुई है। वाला देखे अम्मी को क्या हुआ है। अम्मी बताएं ना आपको क्या हुआ है। अम्मी बताएं ना आपको क्या हुआ है। अम्मी बताएं तो।
इसके बाद फिर फासले हो गए, ठीक है। उसने सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार ली, ठीक है। वो चाहती थी मुझसे दूर हो जाए, ठीक है। मैंने उससे कहा ये बच्चे मेरा खून है, मेरे ताहिर की निशानी है। मैंने उससे कहा सुनो, खताकार हूं, मैंने गलत किया है, कसूरवार हूं, मुझसे बड़ी गलती हुई है और अब मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। ये बच्चे मेरा खून है, इन्हें मुझसे जुदा मत करो। मैंने कहा सुनो, तुम जो बोलोगी वो करूंगा मैं। तुम्हें घर चाहिए घर दूंगा, अगर खर्चा चाहिए वो भी दूंगा, दुनिया की जो चीज भी तुम्हें चाहिए हर चीज लाकर दूंगा तुम्हें।
तुम बस मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे लिए हर हर काम करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए कि इन बच्चों की परवरिश मैं खुद करूँ।
वो आखिरी दिन था मेरे लिए और वो तुम्हें लेकर चली गई। 20 साल से तुम्हें देखने के लिए मेरे दिल में हसरत थी, 20 साल से तुम्हें देखने के लिए मैंने बहुत तकलीफें उठाई हैं। ये इंसाफ है?
मैं तुम्हारे लिए हर हर काम करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए कि इन बच्चों की परवरिश मैं खुद करूँ।
20 साल से तुम्हें देखने के लिए मैंने बहुत तकलीफें उठाई हैं। ये इंसाफ है? कोई और नंबर नहीं है उसका?
नहीं सर, नहीं है।
उसके रहने की जगह का पता चला?
नहीं सर।
नहीं सर, नहीं कहो। इतने अरसे से मेरे पास ही तो था, काम कर रहा था, हर काम करने के लिए यहां आ जा रहा था, लेकिन किसी की अकल में यह बात नहीं आई कि पूछ ले कि उसके रहने का ठिकाना कहां है। कहां रहता है, कहां सोता है, किसी ने भी नहीं पूछा।
सर आप ही ने कहा था कि वो कुछ दिन काम करेगा और फिर थक के चला जाएगा, मुझे क्या मालूम था कि वो रुक जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं?
मैं क्या चाहता हूं? इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं? तुम्हारी ये औकात नहीं कि तुम मेरी सोच को समझ सको। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने ही आए और कितने ही चले गए। अब तुम जैसे लोग आकर मुझे बताएंगे कि मेरे दिल में क्या चल रहा है और क्या नहीं। आखिरी बात गौर से सुन लो, उसे कहीं से भी तलाश करो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपाओ, निकाल कर लेकर आओ यहां, समझे?
बेहतर सर।
जा सकते हो।
माफी चाहता हूं सर, एक बात पूछूं आपसे, क्या उसने कुछ चुरा लिया है आपका?
तलाश करो उसे।
आधे घंटे बाद दोबारा चेक कर लीजिएगा।
जी अच्छा डॉक्टर साहब।
कुछ दवाएं लिखती हैं, मंगवा लीजिएगा।
जी अच्छा, आइए। ये लीजिए।
बहुत शुक्रिया। आइए डॉक्टर साहब।
बहुत शुक्रिया।
बैठिए, तशरीफ रखिए। आप लोग भी बैठिए। क्या हुआ? मेरे ख्याल से दिमागी दबाव है।
यानी खतरा है?
जी हाँ।
डॉक्टर साहब, उनका बुखार उतर नहीं रहा अब तक।
हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, अभी दवाएं दी हैं, असर करेंगी।
डॉक्टर साहब अगर जरूरी हो तो हम अस्पताल ले जाएं।
फिलहाल जरूरत नहीं है, मेरी असिस्टेंट आज रात यहाँ पर मौजूद हैं, वो देख लेंगी।
मैं खुद इनके साथ रह सकती हूँ।
आपने नर्सिंग की है क्या? आपकी वालदा को ड्रिप लगी हुई है और इंजेक्शन भी लगेंगे, और भी बहुत कुछ है, आप ये सब कुछ नहीं कर सकेंगी।
लेकिन मैं उनके साथ तो रह सकती हूँ।
जी रह सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ये लीजिए।
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब।
कैसी हैं आप?
ठीक हूँ मैं।
आप जाइए किचन में, आपके लिए मैंने चाय निकाली है, और फिर ज़रा सा आराम भी कर लें।
बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी।
कोई बात नहीं।
بشین های حرفای من، بشین با تمام وجود، من از عشق میگم تو هم بگو رفتنت خواب بود. بشین های حرفای من، بشین دل بده گوش کن، در رو جهانو فراموش کن. فقط من، فقط تو، فقط من و تو میارزیده هم یه شب زندگی بی تو رو باید قیدشو میزدم. فقط من، فقط تو، فقط من و تو میارزیده هم یه شب زندگی تو رو باید قیدشو میزدم. نبودی ببینی چقدر زمان بی تو غمگین گذشت. تو رویای من غم نبود ولی تلخ و شیرین گذشت. نبودی ببینی چطور میکشه آدمو، باید از یه جایی به بعد ادامه نمیدادمو، ادامه نمیدادمو، ادامه نمیدادمو. رسیدم به جایی که عشق نبودش یکم بود شد. زمین زیر پام خالی و یه آن زندگیم دود شد. خوشی رفت و شادی نمود، دلم شور فردا رو زد. گذشته برام تازه شد مثل داغ روزای
میدونم تلاشم یه روز یه جایی اثر میکنه. ببین تا کجا تا چه حد یه عاشق خطر میکنه.